ओम शांति। सभी मिलकर कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। बाबा का लाडला गुजरात मधुबन में भट्टी करने आया है। मधुबन का दूसरा कमरा अगर गुजरात को कहें तो ये गलत नहीं होगा। दादी प्रकाशमणि जी हमेशा गुजरात को बहुत याद करती रही। जब भी कोई सेवाधारी चाहिए होते थे या बाबा का प्रोग्राम होता था और उस समय और भाई बहने चाहिए होते थे तो दादी जी सल्ला दीदी को कहती थी गुजरात से भाई बहनों को भेजो और आप गुजरात से दौड़ दौड़ के मधुबन में पहुंच जाते थे। हा? तो कितने भाग्यशाली हो जो मधुबन के इतने निकट हो। दूसरे तो जो आते हैं वो कहाँ कहाँ से दूर दूर से आते हैं, दो दो दिन तीन तीन दिन उनको लगते हैं मधुबन में पहुंचने में, परंतु गुजरात को ये भाग्य है। और बाबा गुजरात के लिए क्या कहते हैं, गुजर गई रात, गुजर गई रात। आपके लिए तो कलयुग पूरा हो गया ना। अभी कोई कहेगा क्या मैं तो कलयुग में हूँ? वैसे तो ब्राह्मणों के लिए तो कलयुग तो कब का खत्म हो गया। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। कोई हमसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या सिखाते हो, क्या आपका लक्ष्य है, इस विश्वविद्यालय का क्या लक्ष्य है, तो क्या जवाब देते हैं? यहाँ लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, मनुष्य से देवता बनना। अब वो तो हम बाहर वालों को कहते हैं मनुष्य से देवता बनना, लेकिन हम अपने में देखें कि देवता बनने से भी पहले हमें क्या क्या बनना है। अभी आपको डॉक्टर सविता बहन ने क्लास कराया ना, अशरीरी अवस्था और फरिश्ता स्थिति, तो ये तो बहुत ऊंची स्थिति है जरूर, लेकिन और भी कई स्थितियां हैं। पहले तो हम शूद्र थे, न खुद को पहचानते थे, न परमात्मा को पहचानते थे, न अपने पाठ को ही जानते थे, न घर को जानते थे, बिल्कुल ही अज्ञान के वश थे। भले भक्ति कितनी की होगी आपने भी, लेकिन अभी हम क्या नशे से कहते हैं कि भक्ति का फल भगवान ने आकर के ज्ञान दिया है। जिस ज्ञान से हमारी सदगति होती है, तो ज्ञान तो मिला, और जैसे हमें यह ज्ञान मिला तुम आत्मा हो, तो हमारा पुरुषार्थ शुरू हो गया। सबसे पहला कदम पुरुषार्थ का कौन सा है? देही अभिमानी बनना। और जैसे बताया आपको, शुरू से लेकर के बाबा हमेशा यही कहते रहे, बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। द्वापर युग से देह अभिमान में फंसते आए, और देह अभिमान में फंसते फंसते कहाँ पहुंच गए देखो, कलयुग के अंत में। विकारों की इतनी मैल चढ़ गई जो पूरे तमो प्रधान बन गए। देह अभिमान के कारण विकारों की जंग आत्मा में पड़ती गई, आत्मा मैली होती गई, मुलमा बन गई, सारी आत्मा की शक्ति खत्म हो गई। खाद पड़ते पड़ता पड़ते सोना बिल्कुल मुलमा हो गया, जैसे सोने में चांदी तांबा लोहा ये सब खाद पड़ती जाती है तो सोने का मूल्य तो खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते आत्मा सच्चा सोना थी और कैसे कलयुग अंत में आके बिल्कुल शक्तिहीन हो गई, आत्मा की ज्योति जैसे बुझ गई। लेकिन जैसे हमें पता चला कि मैं एक आत्मा हूं और भगवान हमें इतना ऊंच बना रहे हैं, तो आत्मा की ज्योति जगने लगी, ज्ञान का घृत पड़ता गया, ज्योति बढ़ती गई बढ़ती गई। दीवे में भी हम देखते हैं ज्योति अगर जलती है तो कितना अच्छा लगता है, पर धीरे 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 ज्योति कम होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। तो दो कारणों से ज्योति बुझ जाती है, दो कारण, एक तो घृत खत्म हो गया तो ज्योति बुझ जाएगी, घृत खत्म हो गया घी जो डालते थे वो जैसे जैसे कम होता जाएगा ज्योति कम होती जाएगी, और खत्म हो गया घी तो गई ज्योति बुझ गई। या तो फिर कोई तूफान आता है, बहुत हवा के झोंके आते हैं, तेज हवा चलती है तो उस तेज हवा में भी ज्योति बुझ जाती है। तो आत्मा की भी ज्योति क्यों बुझ गई, क्योंकि ज्ञान तो था ही नहीं, भक्ति करते थे, किसकी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं कुछ पता नहीं, बस भक्ति करेंगे एक दिन भगवान मिलेगा। फिर पूछते थे भक्ति कब तक करनी है, बस करते रहो एक दिन मिलेगा भगवान, पता नहीं किस रूप में आ जाए भगवान। सर्वव्यापी कह करके हमने यही समझा, पता नहीं किस रूप में आ जाए भगवान। हाँ, वो मिसाल देते ना, एक माता रोटी पका रही थी तो रोटी पर फिर घी चौपड़ती थी, लेकिन अब रोटी बनाई और रोटी रखी घी चौपड़ने लिए तो कुत्ता आया एक, और वो कुत्ता रोटी उठा के भाग गया, तो उठा लिया कुत्ते ने। तो उसी समय माता कहती अरे भगवान जी ठहरिए ठहरिए, पहले रोटी को घी तो लगाऊं, क्या पता भगवान कुत्ते के रूप में आ गया हो। अब भगवान कुत्ते के रूप में आ गया तो भगवान को घी लगी हुई जो रोटी देवे ना, ऐसे कैसे भगवान खाएगा। तो भगवान किस रूप में भी आ जाए, कितने अवतार मान लिए, क्या क्या मना समझ लिया भगवान के लिए। लेकिन जब शिव बाबा आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं, हमारा भी और अपना भी, तब हमको हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। और जैसे ये ज्ञान मिला आत्मा का, तो बाबा ने हमें क्या पहली पहली श्रीमत दी, अब अपने को आत्मा समझो, देह को भूलो, तो देही अभिमानी बनो। और सचमुच जैसे बताया गया, ये देही अभिमानी स्थिति पहला पाठ भी है और अंतिम पाठ भी है। कई भाई बहने कहते बाबा रोज रोज मुरली में यही तो कहता है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, रोज रोज यही तो आता है मुरली में। कितनी बार बाबा कहते अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये बाबा कहते रहेंगे ये कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि अभी तक आत्मा समझ बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, बार बार देह अभिमान आ जाता है। तो पहला पाठ ही पक्का नहीं है, तो बाकी तो बहुत गहराई है ज्ञान की। और बार बार देह अभिमान आ जाता है तो बार बार कोई न कोई विकार के वश हो जाते हैं। चलो और कोई मोटे मोटे विकारों के तो वश नहीं हुए, लेकिन ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर हेरा फेरी थोड़ा झूठ वो सब चलता है, फिर कहते क्या करे, चलता है तो चलाते रहते हैं। लेकिन भगवान हमें कितना ऊंच रूप में देखना चाहते हैं, तो जितना हम देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो हम देखते हैं कैसे आत्मा स्वच्छ होती जाती है। और जब तक हम संपूर्ण नहीं बने हैं, तब तक बाबा हमें रोज ये पाठ पक्का कराते ही रहेंगे। जैसे कोई बच्चा है, भूल करता है, तो माँ उसको कहती है, बच्चे सुधरो सुधरो, हाँ भूल मत करो भूल मत करो, लेकिन फिर भी वो करता रहता है, तो माँ फिर भी बोलती रहेगी ना, उसको छोड़ेगी थोड़ी, क्योंकि करता रहता है भूल। कई बार आप कहेंगे सॉरी सॉरी, हाँ बच्चा मम्मी को कहते मम्मी सॉरी मैं फिर नहीं करूँगा, और फिर करता है, तो माँ कहेगी कहाँ तक मैं तुम्हारी सॉरी सॉरी सुनूं, तुम बदलोगे या नहीं बदलोगे, सुधरोगे या नहीं सुधरोगे। तो बाबा भी देखो हमको कितना प्यार देते हैं, कितने हमको स्वमान देते हैं, कितनी हमारी महिमा गाते हैं, लेकिन ये श्रीमद् जरूर देते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि जब तक ये नहीं होंगे, तब तक जो जो बाबा हमसे चाहते हैं, जो बाबा हमारी महिमा गाते हैं, श्रीमद् देते हैं, या जो हमें स्वमान देते हैं, उस तक हम कब पहुंचेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं चलो, ये तो नशा रखा कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्रह्मा की मुख वंशावली है, हम आदि रचना है ब्रह्मा की, और हम ही ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। लेकिन ब्राह्मण बनने से क्या क्या लक्ष्य हमें मिलता है, आज आपकी बट्टी का लक्ष्य भी यही है ना, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया, कोई कम पुरुषार्थ किया क्या, बहुत पुरुषार्थ किया। जब शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया और उनको ये ज्ञान दिया तुम आत्मा हो, सबको आत्मा देखो, बाबा तो परिवार में रहते थे, गृहस्थी थे, बाल बच्चे थे, पांच बच्चे थे, हाँ तीन बेटियां दो बेटे, फिर बहू थी, पोतरे दोतरे सब थे, और शिव बाबा ने उनको कहा कि अब आप अपने को आत्मा समझो, सबको आत्मा देखो। तो बाबा ने कैसे अपने से अभ्यास किया, क्या अभ्यास करते थे, बाबा की युगल थी, तो युगल को भी बाबा देखते थे, तो क्या कहते थे, यशोदा आत्माएं यशोदा आत्माएं। अब यशोदा को भी वो भान आए कि मैं आत्मा हूं, तो बाबा क्या करते थे, दीवारों पर लिखते थे यशोदा आत्माएं यशोदा आत्माएं, ताकि यशोदा जो बाबा की युगल का नाम था, ताकि यशोदा भी पढ़े और वो भी अपने आप को आत्मा समझे। बाबा का लौकिक में बहू में बहुत मोह था, ब्रज इंद्रा दादी बाबा की लौकिक बहू थी, बहुत मोह था बाबा का उनमें, बहुत सुंदर भी थी। जब बिजनेस करते थे बाबा, तो अपने बहू को साथ में ले जाते थे, क्योंकि राजाओं महाराजाओं से मिलते थे, तो उनको गहने पसंद कराने लिए अपनी बहू को वो हीरों के गहने पहना करके ले जाते थे, तो बहुत और भी सुंदर लगती थी वो बहू, बुढ़ापे में भी इतनी सुंदर थी हमारी ब्रिज इंद्रा दादी बाबा की लौकिक बहू। तो जब ले जाते थे तो वो रानियां रानियों रानी के पास भेजते थे बाबा अपने बहू को कि जाओ मिलो और ये गहने देखो, देखेंगे तो बहुत पसंद करती थी, और गहनों के लिए कहती थी ये हीरो के का जो हार है ये बहुत अच्छा है, मुझे खरीद मुझे चाहिए। तो बाबा तो पहले से ही एक सेट तैयार करके ले भी जाते थे कि यही मांगेगी, क्योंकि सुंदर लगती थी वैसे भी वो, तो बाबा का बहुत मोह था उसमें। लेकिन जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई, उस मोह को बाबा ने कैसे खत्म किया, उनका नाम राधिका था, बहू का राधी, तो बाबा कहते थे राधी आत्माएं, राधे आत्माएं, राधिका आत्माएं, दीवारों पर लिखते थे ताकि राधिका भी पढ़े, यशोदा भी पढ़े, यशोदा आत्माएं, राधिका आत्माएं। इतना नशा चढ़ गया आत्मा आत्मा आत्मा। तो बाबा कहते ये पुरुषार्थ का तरीका है, नहीं तो ये दे अभिमान जाता कहाँ है। युगल को देखा, पत्नी ने पति को देखा, पति ने पत्नी को देखा, तुरंत दे अभिमान आ जाता है। और बाबा ने तो सब दे अभिमान हटा दिया। हाँ, वो बहू भी पर्दा करती थी, युगल भी पर्दा करती थी, उस समय तो पर्दा करते थे ना, घूंघट निकालते थे। बाबा ने कहा सब हटाओ, नारी शक्ति, नारी जाति बहुत एकदम शोषित थी, कहीं भी बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, कहीं भी कोई सोशल सामाजिक एक्टिविटी कुछ नहीं थी, बस खाली चार दीवारों में कैद। पढ़ाई वढ़ाई भी इतनी लड़कियां कहाँ करती थी, अभी भी देखो गांव गांव में कहाँ इतना करती है, कोई है जो बहुत आगे बढ़ते हैं। तो उस समय तो पूरा ही जैसे पिछड़ा हुआ था, लेकिन जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बहनों को कितना आगे किया बाबा ने, नारी शक्ति, नारी स्वर्ग का द्वार कहा। तो इसीलिए बाबा ने ये पहले आत्म अभिमानी स्थिति बनाई, नारी शक्ति है ये तो उनको कहा ही, लेकिन पहले आत्म स्थिति, तो दृष्टि बदल गई। और फिर धीरे धीरे बाबा ने कैसे इस ज्ञान का विस्तार किया है ना, तीन मिनट बाबा की याद में। तो देही अभिमानी अवस्था के बाद फिर दूसरा कदम बाबा ने सब बहनों से प्रतिज्ञा करवाई कि अभी अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है, तो मुझे पवित्र और योगी बनना है। ये सब ने बहुत ऊंचा लक्ष्य रखा। पवित्रता की प्रतिज्ञा इतनी मजबूत की कि कोई उनको हिला नहीं सका। और योगी बना, सब संबंध एक शिव बाबा से, बस सब संबंध एक से, ये है योगी की परख। तो सब संबंध एक शिव बाबा से जोड़ा और देह के जो भी रिश्ते थे वो सब बाबा ने खत्म किए। मम्मा जब आई अपनी माँ को लेकर के, और मम्मा बच्ची थी, उनकी माँ तो बड़ी थी लेकिन मम्मा मम्मा बन गई, तो उनकी माँ भी मम्मा को मम्मा कहती थी, बेटी को मम्मा कहती थी। बाबा की युगल थी वो भी आत्मा, फिर बाबा उनको बच्ची कहते थे, सब बाबा की बच्चियां, तो युगल भी तो बच्ची हो गई। और युगल भी बाबा को बाबा कहती थी, वो पति पिता बन गया, पत्नी बेटी बन गई, मानो सब संबंध भी बदल गए, बिल्कुल बदल गए, दृष्टि बदल गई, सारी वृत्ति दृष्टि स्मृति सब बदल गए एक आत्मा की अनुभूति से। और धीरे धीरे पवित्र बनो, योगी बनो, इनसे आगे बढ़ते बढ़ते फिर बाबा ने हमें क्या कहा कि बच्चे अभी कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनकर संपूर्ण बनना है। बहुत बड़ा लक्ष्य बाबा ने दिया। तो किसको कहेंगे कर्मातीत बनना? कर्मातीत बनने का मतलब ये नहीं है कि सब समाप्त हो गया, संपूर्ण हो गए, नहीं। कर्मातीत पहले बनते हैं फिर संपूर्ण जाकर बनते हैं। तो कर्मातीत स्थिति क्या होती है वो हमने दादियों में देखा। संपूर्ण बनने से पहले वो कर्मातीत स्थिति है। रविवार की बाबा की जो मुरली चली सारी कर्मातीत स्थिति पर ही थी। कर्मातीत स्थिति माना किसी भी कर्म के बंधन से परे, कर्म का बंधन और फिर कर्म के फल का बंधन दोनों से परे। ये बहुत ऊंची स्थिति है। कर्म किया और न्यारे हो गए। गीता भी यही कहती है, गीता में आता है कर्मणे वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचनम। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, फल की चिंता मत करो, फल ईश्वर को छोड़ दो। तो बाबा ने भी कहा कर कार दे दिल यार दे, हाथों से कर्म करो लेकिन बुद्धि शिव बाबा की तरफ हो। ये सच्चा कर्म योग है, कर्म योग संन्यास गीता में आता है। कर्म संन्यास से कर्म योग संन्यास श्रेष्ठ है। तो कर्म करो, परमात्मा को याद करो और विकारों का संन्यास करो। क्योंकि कर्म संन्यास तो होता ही नहीं है, कर्मों का संन्यास नहीं हो सकता। आत्मा जब शरीर में है तो कर्म तो होता ही है, देखना बोलना हंसना बैठना खाना पीना ये सब कर्म तो है ही है, तो उससे तो हम दूर नहीं जा सकते हैं, शरीर में है। लेकिन कर्म किया और फिर उस कर्म से न्यारे हो गए, ये स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है। पर मनुष्य इस स्थिति को नहीं समझते, इसीलिए कहते कर्म तो करेंगे ही, फिर कर्म में फंस भी जाते। पर बाबा ने कहा कर्म करो और न्यारे हो जाओ। कैसे कर्म करो और न्यारे हो जाओ? कईयों को कर्म करने के बाद कितना संकल्प आता है, मैंने पता नहीं अच्छा किया गलत किया बुरा किया, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, पता नहीं इसका नतीजा क्या होगा, क्या फल मिलेगा, क्या इसका परिणाम होगा, कितने हद तक इससे कुछ प्राप्ति होगी, किया तो जरूर। एक छोटा सा मिसाल मैं आपको देती हूँ, हंसी का मिसाल है। माताएं खाना पकाती है, पति के लिए बच्चों के लिए परिवार के लिए भोजन पकाती है। अब इतना प्यार से भोजन पकाती है लेकिन अपेक्षा भी रखती है कि मैं इतना प्यार से ये डिश बनाई है तो मेरे बच्चे मेरा पति खाए और मेरी थोड़ी महिमा तो करे, मेरी महिमा करे कि आज तो तुमने ये बहुत अच्छा बनाया, बहुत खाना टेस्टी बनाया, बहुत प्यार से बनाया, थोड़ी तो तारीफ करे मेरी। तो कई चाहती है, कई बार हम देखते हैं ना, हम कहीं जाते हैं तो भोजन परोसते हैं तो फिर पूछते हैं, बहन जी ये सब्जी आपको अच्छी लगी? कहते हैं बहुत अच्छी लगी। तो फिर क्या कहेंगे, बहन जी ये सब्जी मैंने बनाई है, ये सब्जी मैंने बनाई है। कहते अच्छा आपने बनाई है, बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी। अभी टेस्टी नहीं होगी तो भी कहना तो पड़ेगा ना टेस्टी है, क्योंकि वो कहेगी मैंने बनाई है। तो इसलिए पूछते हैं हाँ कैसे लगी, मैंने बनाई है। तो एक मिसाल देते हैं, एक चुटकुला ही है। तो एक माता बहुत प्यार से खाना बनाती थी, रोज पति को इतना प्यार से सर्व करती थी, लेकिन कभी भी पति ने एक बार भी उसकी तारीफ नहीं की कि तू बहुत अच्छा बनाती हो। तो एक दिन वो बहुत नाराज हो गई पति से और कहने लगी, मैं इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, रोज नया नया डिश आपको बना के खिलाती हूँ, लेकिन आपने एक दिन भी मेरी तारीफ नहीं की। तो पति ने सोचा, भाई बात तो सही है, बेचारी मेहनत तो करती है, एक दिन भी मैंने तारीफ नहीं की है। तो अगले दिन इसने कहा कि आज जब मैं भोजन करूँगा ना तो मैं सबसे पहले खाने से पहले ही तारीफ करना शुरू कर दूंगा। अरे वाह तो बहुत अच्छा बनाया। तो अभी परोसा ही था कि तारीफ करनी शुरू कर दी। तो पति पत्नी जो थी वो तारीफ सुन करके और ही दुखी हो गए और ही नाराज हो गए। तो पत्नी के तो पति कहते क्यों दुखी हो गई, क्यों नाराज हो गए, मैंने तो महिमा की, तुमने बहुत अच्छा बनाया। तो उसने कहा मुझे पता है आपने क्यों तारीफ की, क्योंकि आज जो भोजन आया है ना वो पड़ोसी ने बनाया है, पड़ोसन ने बनाया है। तो पड़ोसन की तारीफ तो सुनना नहीं चाहेगी ना, अपनी तारीफ सुनना चाहेगी। तो देखो ऐसा होता है खेल, लेकिन हमने किया और उसका हमको कुछ तो मेरी महिमा हो। कई टीचर्स पहने भी ऐसे वो भाषण करके आएगी फिर पूछेगी, दीदी मैंने अच्छा भाषण किया, मैंने ठीक भाषण किया? हम कहते थे हाँ बहुत अच्छा भाषण किया, दीदी कुछ करेक्शन हो तो बताओ। नहीं 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 बहुत अच्छा भाषण किया, वेरी गुड, मुबारक हो। तो खुश होती थी पर पूछती जरूर थी, मैंने अच्छा किया भाषण। परंतु पूछना माना महिमा चाहना, और अगर समझो महिमा नहीं की और हमने कह दिया नहीं नहीं आज तो तुमने ठीक नहीं किया भाषण, एकदम नाराज छुई हुई हो जाती थी। हाँ जैसे छुई हुई को हाथ लगाओ और वो पत्ता जो है वो नीचे हो जाए। इसीलिए महिमा तो करनी पड़ती है भले न भी अच्छा किया हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये भी इच्छा रखना कि हम कर्मातीत अवस्था से कितना दूर है। चलो कर्म किया भले हमने महिमा की इच्छा न भी रखी, लेकिन फल की चिंता करते, पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं अच्छा उसकी रिजल्ट आएगी नहीं आएगी, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, इतना अंदर में असमंजस में आते हैं जो बात मत पूछो। और फिर सबको वर्णन भी करते हम इतना अच्छा किया पता नहीं इसकी रिजल्ट क्या निकलेगी। तो उससे भी न्यारा बनना, कर्मातीत बनना। अगर ये इन सब में हम फंसे हुए हैं, कर्म और उसके फल में फंसे हुए हैं, तो हम कर्मातीत से बहुत दूर है। परंतु हमने दादियों को देखा कि कैसे कर्मातीत अवस्था के नजदीक गई, कैसे गई। हम तो मैं बहुत बड़ा मिसाल देती हूँ दादी जानकी जी का। दादी जानकी जी को यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में ब्रह्मा कुमारियों को भाषण करने का मौका मिला। तो दादी जानकी को निमंत्रण मिला कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ा 5-3 मिनट का ही सही भाषण करो। अब दादी जानकी को का इंग्लिश में करना है। अब जब दादी जानकी पहली बार लंदन जा रही थी तो बाबा ने उनको कहा तुमको लंदन में जाके सेवा करनी है। 1974 में अवैध बाबा ने उनको कहा, तो उस समय दादी ने कहा बाबा मैं लंदन जाऊंगी, मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, इंग्लिश तो आती नहीं है बाबा, मैं क्या सेवा करूंगी। बाबा ने कहा जरूरत नहीं है तुमको इंग्लिश आने की, तुम्हारे आगे बहुत होंगे जो ट्रांसलेट करेंगे, आप जो बोलेंगे हिंदी में बहुत होंगे, इसलिए जरूरत नहीं है कि इंग्लिश जानो तभी आप वहाँ सेवा कर सकोगे। चलो गई। पर उसके बाद कैसे सबके संग में आकर के भाई बहनों के संग में इतनी अच्छी इंग्लिश सीख गई। तो यूनाइटेड नेशंस में उसको 3 मिनट का भाषण करना था, तो दादी को इंग्लिश में लिख करके दिया और दादी ने कई बार रिवाइज किया होगा, इंग्लिश में बोला और वहां जाकर के इतना दृढ़ता से दादी ने इंग्लिश में भाषण किया जो बात मत पूछो, लोग खड़े हो गए, तालियां बजाई वहां यूएन में, इतना था उस समय। अच्छा फिर क्या हुआ, वो तो पूरा हो गया। और जब दादी वापस आई, दादी उसके बाद मधुबन में आई, तो मैंने अनायास ही दादी से कहा दादी आपने यूएन यूनाइटेड नेशन यूएन में इंग्लिश में भाषण किया, दादी ये तो आपने तो बहुत अच्छा किया, हमने भी देखा। तो दादी मेरा मुंह देखती रही, तो मैंने कहा पता नहीं मैंने गलत तो नहीं कहा, मैं तो अच्छा ही कहा। तो दादी ने कहा अरे वो तो मैं भूल भी गई। अब बताओ यूएन में भाषण करके आई और भूल भी गई, नहीं तो कितनी लोग इतनी मेवा करेंगे, मैं यूएन में गई थी, मुझे निमंत्रण मिला था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, बिल्कुल भूल गई। फिर दादी यहाँ तक कहती मुझे ना समाचार सुनाना आता नहीं है, बस बाबा का ज्ञान जो हमें बाबा देते बस वो ही मैं सुनाती हूँ, वो समाचार सुनाना हो ना तो जयंती को बोलो, क्योंकि जयंती बहन भी साथ में होती थी। यानी दादी जानकी इतनी उपराम, बस किया बिंदु लगा दिया, फुल स्टॉप। मानो फुल स्टॉप क्या होता है, बिंदु क्या होता है, वो हमने दादियों से सीखा। दादी प्रकाशमणि इतनी सेवा करती थी, क्या नहीं, ये सब दादी प्रकाशमणि के सानिध्य में बना, ज्ञान सरोवर, शांति वन, मनमोहिनी वन, ये सब नदी किनारे या जो भी है, ये सब दादी प्रकाशमणि जी ने जो 38 साल इतनी सेवा की और इतना ये दिन दुगनी रात चौगनी गति से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया। लेकिन जब दादी जी को देखते थे इतनी सरल स्वभाव, इतनी सरल स्वभाव, अपनी महिमा क्या करनी होती है ये तो दादी के मुख से कब सुना ही नहीं। उसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, हम दादी के पास ही बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो क्या प्रश्न पूछेंगे फिर दादी को थोड़ा बताते थे। तो किसी पत्रकार ने दादी से पूछा दादी आप ये इतना बड़ा विश्वविद्यालय, इतने हजारों आपके सेवा केंद्र, इतनी हजारों बहनें, आप सब ये कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। तो दादी जी पहले तो मुस्कुराई, कुछ जवाब नहीं दिया। तो दादी जी ने बताया मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। आप सोचो क्या कहा जवाब, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, ये जो सारे बैठे ना ये लोग ही करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। अब मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, इतने सरल रूप से दादी ने कह दिया, क्योंकि न्यारी प्यारी इतनी हल्की दादी जैसे कि कुछ है ही नहीं। नहीं तो कोई होते ना इतना बिजी हूँ, ये काम वो काम वो काम ये काम, सारा दिन बुद्धि में काम ही काम रहता है, और दादी इतनी हल्की, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। तो फिर दादी को उन्होंने फिर से दोबारा कहा, दादी पर इतनी बड़ी संस्था, आप उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है तो आप कैसे करते हैं? फिर दादी का शुरू हुआ, देखो यहाँ पर भी एक रूहानी गवर्नमेंट है, जैसे वहाँ स्टेट्स होती है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स होती है, ये सब होता है ना देश के अंदर, तो यहाँ भी हमारे जोन्स है, फिर उनके सब जोन्स है, फिर उनके सेंटर्स है, फिर उनके क्लास गीता पाठशालाएं हैं, उनकी क्लासेस हैं, ये सब बहुत व्यवस्थित है, परंतु सब कराने वाला शिव बाबा है, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, सब बाबा चला रहा है, वो करण करावन हार करा रहा है, मैं तो इतनी निश्चिंत हूँ क्योंकि बाबा का कार्य है, मेरा थोड़ी है। मानो इतनी हल्की होकर के दादी ने ये सब बातें कही, वो सारे अखबार वाले हैरान हो गए, हाँ ऐसे कैसे दादी जी इतनी निश्चिंत है, इतना बड़ा कार्य करके आएगी लेकिन इतनी हल्की। तो वो दादी जी का जो अनुभव हम देखते थे, सचमुच इतनी प्रेरणा हम लेते थे दादियों से, ये भी मेरा सौभाग्य है कि दादियों के इतने निकट रहने का हमको मौका मिला। कैसे ये कार्य बढ़ता गया बाबा की मदद से, पर निमित्त तो दादी थे ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपने परिवार में भी रहना है, बाबा मना नहीं करते हैं, परिवार भी संभालो, सब संभालो, लेकिन कैसे न्यारे होके रहो, फंसो नहीं, क्योंकि अभी समय नहीं है फंसने का। बाबा हमें ताकीद करते रहते हैं, बच्चे अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, तो घर जाना है तो हमको अशरीरी होके जाना है, वो तो पता है, ये सब कुछ साथ नहीं चलेगा ये भी पता है, लेकिन हम उसके लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि अगर न्यारा नहीं बनेंगे तो अंत में धोखा खाएंगे। जैसे हम दुनिया में भी देखते हैं ना, कोई व्यक्ति अपना लगा हुआ है अपने धंधे, नौकरी, बिजनेस, बाल बच्चे, ये वो पता नहीं लफड़े इतने, उसके बात मत पूछो, और अचानक उसकी जैसे मरने की घड़ी आती है और उसको कहा जाता है भगवान को याद करो। अब सारी उम्र तो की नहीं, लास्ट में कहाँ भगवान याद आता है, नहीं आता है, क्योंकि किसकी घड़ी अंतिम घड़ी होगी, क्या कौन जाने। एक मिसाल बताते हैं ना, एक कोई व्यक्ति एक गुरु के पास गया और गुरु से कहा कि गुरुजी मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैं ये पूजा पाठ प्रार्थना ये सब मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अंदर में डर भी लगता है कि मैं अचानक मर जाऊं तो मैं क्या करूं, कब मैं भगवान की भक्ति करना शुरू करूं। तो गुरु ने कहा मरने से एक दिन पहले शुरू करना। उसने कहा मरने से एक दिन पहले, पर कब मरूंगा ये तो पता ही नहीं, तो कैसे मरने से एक दिन पहले मालूम तो ना कब मरूंगा जो एक दिन पहले मैं करूं। तो फिर गुरु ने सोचा और एकदम अंतर ध्यान हो गया और कहा कि बस 3 दिन के बाद आपकी मौत है, 3 दिन के बाद। अब उसको तो चिंता लग गई और धीरे धीरे सब कुछ भूलता गया, बस एक भजन कीर्तन में लगा रहा। अब 3 दिन के बाद तो मरा ही नहीं हो, तो गुरु के पास गया, गुरु जी आपने कहा 3 दिन के बाद मर जाएंगे, तो गुरु ने उनको कहा कि हर वक्त समझो कि कभी भी मौत आएगी, ये नहीं कि 3 दिन के बाद मरेंगे तो अभी करना है, कभी भी। और बाबा क्या कहते, यही तो कहते हैं, बच्चे अचानक होगा, अचानक सब कुछ अचानक होगा, तो अचानक अगर होगा तो हमको हर वक्त तैयार रहना है, हर वक्त। और हर वक्त तैयार रहना है तो उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। एक विद्यार्थी को पता है कि मेरी परीक्षा होगी, लेकिन उसको पता नहीं है कब होगी। सरप्राइज टेस्ट भी होती है, अचानक स्कूल जाएगा और उसको बताया जाएगा आज आपकी परीक्षा है। वो कहते मैं तो पढ़ाई की नहीं, लेकिन परीक्षा तो कभी भी आ सकती है। पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएगा ना, इसीलिए हर वक्त उसको तैयार रहना है। कभी भी सरप्राइज टेस्ट होती है स्कूलों में, कभी भी ली जा सकती है। तो हर वक्त बच्चे को तैयार रहना है। तो बाबा भी हमें क्या कहते हैं, बच्चे अचानक होगा, तो इसीलिए उस अचानक का सामना करने के लिए ये कर्मातीत अवस्था बहुत जरूरी है। तो कर्मातीत का मतलब ये नहीं है छोड़ छाड़ करके सन्यासी बन जाना, नहीं नहीं नहीं, बाबा तो कभी नहीं कहते सब छोड़ो, कुछ भी छोड़ो नहीं। सन्यासी तो छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि समझते ये सब माया है, माया है, माया, पत्नी माया है, बच्चे माया है, धन माया है, इसे छोड़ के जाते हैं। और यहाँ बाबा कहते नहीं, परिवार में रहना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी फंसना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि ये माया नहीं है। वो माया कह करके छोड़ देते हैं, पत्नी माया है। बाबा कहते नहीं, पत्नी तो शिव शक्ति है, उसको शक्ति रूप में देखो, जिस शक्ति की आप पूजा करते हो, आपके घर में शक्ति बैठी है, उसका तिरस्कार करेंगे और शक्ति की जाके पूजा करेंगे। एक रियल मिसाल मैं आपको देती हूँ। एक व्यक्ति था, वो उसकी पत्नी ज्ञान में थी और बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग थी। अब विकार के लिए लड़ता रहता था, उनसे झगड़ा करता रहता था, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग थी। तो नवरात्रि आई तो वो देवी का भक्त था, तो खूब देवी की पूजा की और उसने देवी की पूजा की, ये सब व्रत व्रत सब रखा। और यहाँ उसकी पत्नी इतना बाबा को तपस्या याद करती थी, इतनी तपस्वी बन गई, क्योंकि वो तो पवित्र ही रहते हैं फिर तो इतनी 9 दिन इतनी इसने तपस्या की जो बात मत पूछो। अब जब नवरात्रि पूरी हुई तो उसका फिर वही नॉर्मल रूप हो गया। फिर उसको जैसे ही परेशान करना शुरू किया, उसी वक्त अपनी पत्नी से देवी का साक्षात्कार हो गया उसको, देवी का साक्षात्कार। अब सोचो, जिस देवी की वो पूजा कर रहा था, वो अपनी पत्नी से वो साक्षात्कार हो गया, क्योंकि इसने भी बहुत तपस्या की। वो अपनी भक्ति कर रहा था, ये तपस्या कर रही थी, और देवी का साक्षात्कार पत्नी से किया। उसके बाद तो उसके पांव पड़ने लगा, चरण छुए और कहा, अभी मुझे मालूम पड़ा आप ही देवी हो। और तो देखो, उसका घर ही बदल गया, परिवर्तन उसके जीवन में आ गया। लेकिन ये नारी शक्ति है, तो नारी नर्क का द्वार ये तो है ही नहीं, पर नारी स्वर्ग का द्वार है, बाबा यही कहते हैं। इसीलिए बहनों माताओं की देखो, बाबा के पास भी बहनें माताएं ज्यादा आती है, भाई भी आते हैं, क्योंकि सबके लिए है, परंतु बाबा ने बहनों को आगे किया है। तो स्त्री स्वर्ग का द्वार है, ये अगर समझो तो हर स्त्री के प्रति इतनी श्रेष्ठ भावना रहे। इसलिए माया माया नहीं कहेंगे। फिर कोई कहे बच्चे माया है, बाबा कहते बच्चे भी माया कहाँ है, वो तो बेचारे इतने पवित्र पौधे हैं, बच्चे कितने प्यारे होते हैं, कितने इनोसेंट होते हैं, उनको उनको क्यों माया कहें? वो माया नहीं है, वो तो पवित्र फूल है। फिर कोई कहे धन माया है, तो बाबा कहते धन भी माया नहीं है, लक्ष्मी तो धन की देवी है, उसको माया थोड़ी कहेंगे। लेकिन माया क्या है, बाबा माया का भी सही अर्थ बताते हैं। स्त्री के प्रति जो काम वासना है वो माया है। इसीलिए बाबा कहते साथ में रहो, ज्ञान की तलवार बीच में रखो, आत्मा आत्मा भाई भाई देखो। ये कितनी ऊंची स्थिति है, और जिन परिवारों में हम ये देखते हैं उनका घर बिल्कुल स्वर्ग की तरह है। बाबा तो घर घर को स्वर्ग बनाने आए हैं। हाँ, जहाँ जो युगल बैठे हैं वो हाथ उठाओ, युगल जो बैठे हैं देखो कितने युगल है। घर घर स्वर्ग बनाया है ना, हाँ बनाया है ना घर घर स्वर्ग, बिल्कुल बिल्कुल। फिर कोई के बच्चे में आया है तो बाबा कहते हैं बच्चे तो प्यारे हैं, पर हाँ बच्चों में अगर मोह है तो जरूर वो माया है। और हमने देखा बच्चों से भी ज्यादा जो पोतरे दोतरे हैं ना उनमें ज्यादा मोह हो जाता है। हाँ, माताओं का होता है कि नहीं, माताएं कि नहीं होता है, जो कहते नहीं 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 है मोह, हाथ उठाओ, देखो थोड़ी थोड़ी हाथ उठा रही है। क्योंकि वो पोतरे जो दोतरे जो मिले ना वो तो ब्याज के रूप में है ना, वो ब्याज का रूप है। संबंध बहुत है गहरा, लेकिन वो ब्याज है। जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलते हो तो अकाउंट में मानो आपने 1,00,000 रुपया डाला, अकाउंट खोला, फिर आप हर 6-6 महीने में ब्याज मिलता है, तो हर 6 महीने के बाद देखेंगे ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना मिला। तो जो अमाउंट पहला डाला उस पर ध्यान नहीं जाएगा, पर ब्याज पर ज्यादा ध्यान जाता है। इसको इसलिए इंग्लिश में इसको इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट माना उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो बच्चों से भी ज्यादा पोतरे दोतरों में मोह चला जाता है। लेकिन बच्चे पोतरे दोतरे प्यारे है ठीक है, लेकिन मोह तो विकार है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं मोह ना हो, बाकी प्यार से संभालो पोतरे दोतरों को, मना थोड़ी है। उनको भी बाबा का इतना ऊंचा ज्ञान दो, वो भी तो बाबा के बच्चे हैं ना। फिर बाबा कहेंगे धन भी माया नहीं है, धन को तो सफल करो, ये सफल करो, तन को भी कष्ट नहीं दो, सफल करो, मन को भी सफल करो, सफल करके सफलता को पाओ, माया माया कह के छोड़ना भी नहीं है, सफल करो। क्योंकि जितना सफल करेंगे उतनी आपकी ये वर्तमान जीवन भी सफल और भविष्य तो जन्म जन्मांतर सफल। तो इसीलिए धन से सेवा करो, ट्रस्टी होके रहो। बाबा ने उस दिन कहा पहले मुझे ट्रस्टी बनाओ, मुझे ट्रस्टी बनाओ, माना ये सब बाबा का है। फिर बाबा कहेंगे अच्छा रखो अपने पास, बाबा को तो चाहिए नहीं, बाबा को शरीर ही नहीं है, परमधाम में कहाँ कुछ ले जाएंगे, सब बच्चे आपके लिए है, आपके लिए ही, आपको ही संभालना है, आपको ही उसमें रहना है। इसीलिए बाबा का है ये समझ के फिर बाबा आपको देता है, बच्चे आप ट्रस्टी होके रहो, बाबा का समझ करके यूज करो, तब सफल होगा, तब हम सचमुच कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंचेंगे। क्योंकि मेरा मेरा से मुक्त हो गए, तो कर्मातीत माना न कर्म का बंधन न फल का बंधन, दोनों के बंधन से परे। अगर सफलता मिली बाबा बाबा ने कराया, मैंने क्या किया। अगर नहीं मिली सफलता कोई बात नहीं, बाबा मुझे मुझसे कुछ और कुछ कराएगा। क्योंकि अगर सफलता मिली और उस समय ये सोचा ये मैंने किया और उसकी फिर प्रशंसा हुई, तो प्रशंसा स्वीकार कर ली, और कल गलत हो गया कुछ वो भी तो मैंने किया, और फिर निंदा हुई, तो प्रशंसा को अगर स्वीकार किया तो निंदा को भी स्वीकार करो। लेकिन निंदा को स्वीकार करना करने लिए तैयार नहीं है, प्रशंसा के लिए तो पूछेंगे हाँ कैसे किया कैसे किया, प्रशंसा चाहिए। लेकिन न प्रशंसा की आश रखो और न निंदा को स्वीकार करो, क्योंकि मैं तो निमित्त था बस, बाबा ने कराया। अगर प्रशंसा मिले तो भी स्वीकार मत करो, बाबा ने किया, बाबा मैंने क्या किया। कई बहुत आते बहुत कहते बहन जी आपने बहुत अच्छा क्लास करा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, कहते बाबा ने कराया। कभी नहीं स्वीकार करो, अगर एक बार भी स्वीकार किया ना, थोड़ा सा अभिमान उसका आया तो ग्लानी निंदा भी स्वीकार करनी पड़ेगी, नहीं तो निंदा ग्लानी भी स्वीकार करने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रशंसा भी स्वीकार नहीं की, जो बाबा को कराना था कराया और सचमुच भूल भी गए। कई कहते बहन जी 10 साल पहले आपने मुझे ये वरदान दिया था, वो बहुत बहुत मदद किया दीदी, आपने जो कहा वो ही काम आया। आप कहते हमको तो कुछ याद भी नहीं है। क्या याद होगा, इतने सारे भाई बहने मिलते हैं, कहाँ याद है। इसको कहते नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन वो याद कराते तो हम मुस्कुरा देते हैं, ठीक है। पर कभी भी स्वीकार नहीं करना है, ये समझो हम कर्मातीत अवस्था के निकट जा रहे हैं। फिर बाबा कहते न्यारा प्यारा भी बनना है, पर कहाँ न्यारा बनना है, कहाँ प्यारा बनना है, कहाँ हल्का बनना है, ये सब परख शक्ति बहुत जरूरी है। पर हम कई बार क्या करते हैं, जहाँ न्यारा बनना है वो बहुत प्यारे बन जाते हैं, सोचते कुछ इनसे मिलेगा तो प्यारे बन जाते हैं, और जब कुछ नहीं मिलेगा तो न्यारे बन जाते हैं। अब ये भी तो स्वार्थ हो गया ना, स्वार्थ है तो प्यारे बन जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो न्यारे बन जाएंगे, होना चाहिए और ही विपरीत। वास्तव में कुछ मिले ना मिले, सबसे समान प्यार। कोई कहे कि मेरा सबसे प्यार है पर मेरे पड़ोसी से बहुत नफरत है, पड़ोसी से भी नफरत क्यों? अगर सबसे प्यार तो पड़ोसी से भी तो प्यार करो। औरों से बहुत प्यार पर घर वालों से प्यार नहीं, तो घर वालों से क्यों प्यार नहीं, औरों से प्यार है तो? या केवल घर वालों से प्यार और किसी से कोई लेना देना नहीं, वो भी नहीं, क्योंकि सेवा की भावना माना सबके प्रति वो भावना, ये तेरे मेरे के हद से बाबा हमको निकाल रहे हैं। देवता किसको कहेंगे, असुर मनुष्य और देवता तीनों में क्या अंतर है? है तो तीनों ही मनुष्य का रूप, लेकिन असुर की वृत्ति क्या होगी, मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा है, मेरा सो मेरा, हाँ तेरा भी मेरा, या तेरा सो मेरा, मेरे हाथ मत लगाओ ये मेरा है, हाथ क्यों लगाया, ये तेरा भी मैं मेरा कर दूंगा, यही सोचते हैं। ये कलयुगी दुनिया ये आसुरी वृत्ति है, और मनुष्य क्या कहेगा, मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा, ठीक है दो भाइयों का वो बंटवारा हो गया, बीच में दीवार बना दी, तुम्हारा हिस्सा ये मेरा हिस्सा, तो मेरे हिस्से में मत आना, मैं तेरे हिस्से में नहीं आऊंगा, मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए तो मेरा नहीं मांगना, ये तो साधारण मनुष्य की स्थिति है। पर देवता क्या कहेंगे, देवता कहेंगे मेरा सो तेरा तेरा सो मेरा। पहले जमाने में ऐसे ही तो होता था, कोई घरों को ताला नहीं लगता था, क्यों नहीं लगता था, क्योंकि कोई चोरी नहीं करता था, दूसरे के घर पर भी अगर कुछ भी चाहिए मांगते थे और सहज मिल जाता था, जरूरत ही नहीं थी तेरा मेरा करने की, सब एक परिवार अनुभव करते थे। सतयुग में ऐसा ही होगा ना, एक विश्व परिवार होगा, तो सतयुग भी तो एक विश्व परिवार की तरह ही होगा ना। यहाँ भी देखो हम मधुबन में रहते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब बाबा के सेवा में है ना। अब मुझे कहीं जाए कुछ चाहिए तो ये थोड़ी वो कहेंगे इतना पैसा दो, कोई कोई यहाँ बिजनेस थोड़ी चलती है, सब बाबा देता है, बाबा से ही हम लेते हैं ना भाई, मेरे पास जो ज्यादा है वो मैं आपको दूंगी, आपके पास जो ज्यादा है मैं आपसे लूंगी, ऐसा ही बाबा का ये कार्य चलता है ना, डिपार्टमेंट ऐसे ही चलती है। अपना स्वार्थ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब सेवा में है। लेकिन वो देवताओं की स्थिति इतनी ऊंची थी, पर हम तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, तो हम देवताओं से ऊंचे क्या कहेंगे? देवताएं तो कहेंगे 1300 मेरा, 1300 तेरा, पर हम क्या कहेंगे? न कुछ मेरा न कुछ तेरा, ये सब किसका किसका? तो आपका भी जो परिवार है उसमें भी यही सोचो, ये बाबा का है, बाबा का है। तो कोई गलत कार्य नहीं करेंगे अपने तन मन धन से, ये है वास्तव में कर्मातीत बनने की निशानियां। और इतने ही न्यारे, इतने ही प्यारे, सबके प्यारे। और कैसे बनेंगे प्यारे? जब सबके गुणों को देखेंगे, बस सब में कोई न कोई गुण है, कोई न कोई विशेषता है। अवगुणों पर तो नजर जानी नहीं चाहिए, और जब केवल गुणों पर नजर जाएगी तब सर्व गुण संपन्न बनेंगे, है ना? सर्व गुण संपन्न बनना है तो सर्व गुण संपन्न बनने के लिए क्या युक्ति है? सबका गुण देखो, सबका गुण लो, वो चोट भले बनो, मना नहीं है। सर्व गुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण। कई पूछते हैं संपन्न और संपूर्ण में क्या अंतर है? तो संपन्न माना भरपूरता, जैसे चंद्रमा संपन्न होता है प्रकाश में, पूनम की रात, फुल मून, पूरा प्रकाश उनका दिखाई देता है, संपन्न है, भरपूर है। और संपूर्ण माना आकार में संपूर्ण, गोल आकार। बाकी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में गोल आकार नहीं होता है, तो ये संपूर्ण हो गया पूर्णम की रात। तो आत्मा भी अपनी पवित्रता में संपूर्ण, इतनी संपूर्णता हो कि स्वप्न में भी कहीं अपवित्रता न हो, तब कहेंगे संपूर्ण। और सर्व गुणों में संपन्न, हर एक से गुण लो तो देखो सर्व गुण संपन्न बन जाएंगे। तो इसीलिए शिव बाबा ने हमें लक्ष्य बहुत बड़ा दिया है। फरिश्ता तो उसके बाद बनेंगे, पर उसके पहले संपन्न संपूर्ण बनना है, उसके पहले कर्मातीत बनना है। तो अभी समय अनुसार अब वो आ गया है समय, जो हम न्यारे प्यारे बनते जाएं, अपने जीवन में इतना सुंदर बैलेंस रखें, कोई और पाप कर्म न करे, जो पिछला खाता है उसको अभी चुकतू करना है, नया खाता अभी नहीं कोई बनाना है, और जो है वो कर्म भोग से चलो, कोई व्याधि आई रोग आया खुशी खुशी चुकतू करो, बाबा की याद से खत्म करो, और आगे कोई हिसाब किताब न बने, किसी को दुख नहीं देना है, मन वचन कर्म से कुछ भी हो जाए। त्याग तपस्या सेवा की इतनी लगन हो सबके अंदर, तो देखो सहज कर्मातीत अवस्था हमारी हो सकेगी, और संपन्न संपूर्ण बन के आत्मा वापस अपने घर जाएगी बाबा के साथ। यही है ना हम सबका लक्ष्य, यही सबका लक्ष्य है ना? कि नहीं? हाँ, जो समझते यही लक्ष्य है हाथ उठाओ। बस यही लक्ष्य है, बस यही पुरुषार्थ है। कई कहते ना बहन जी क्या पुरुषार्थ करे, क्या पुरुषार्थ करे, अरे क्या पुरुषार्थ करे, पूछने का होता है क्या? बस करो, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। हाँ, चेक तो करते खो, पर चेंज भी साथ में हो, तो यही पुरुषार्थ है जो बाबा हमसे हर बार मुरली में कहते हैं। बस उसको अपने जीवन में धारण करते जाओ और संपन्न संपूर्णता के निकट पहुंचो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू।